سو خداوند کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. نئے عہد نامہ میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا چار باب اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک پڑھیں گے, لیکن پانچویں آیت پر ہم غور کریں گے, سیکھیں گے. اور خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول یوں کہتا ہے, پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو, یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ, تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو, اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے. ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح, چنانچہ تم ہے جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے, امید بھی ایک ہی ہے, ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی ایمان, ایک ہی بپتسمہ, اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہم نے کل کے دن میں یہ سیکھا تھا کہ پالوس رسول پانچویں آیت میں کہتا ہے کہ ایک ہی خداوند ہے, اور جب وہ یہ بات لکھتا ہے تو ہم نے جانا تھا کہ اس نے اس وقت کے ایمانداروں کو جو یونانی تھے, رومی تھے, دوسری قوموں سے تھے, جو کیا کرتے تھے, بادشاہ شہنشاہوں کی, بتوں کی, دیوی دیوتاؤں کی اور دوسرے حاکموں کی عبادت کرتے تھے, ان کو اپنا مالک اور اپنا خداوند مانتے تھے. لفظ خداوند کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے آقا, مالک, استاد, ربی یا شہنشاہ یا اعلیٰ درجہ رکھنے والا شخص. سو جب پالوس رسول نے افسس کے رہنے والے ان ایمانداروں کو لکھا کہ ایک ہی خداوند ہے, تو پالوس رسول نے کیا کہا؟ اس نے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا کہ بے شک بہت سے شہنشاہ ہیں, بے شک بہت سے بادشاہ ہیں, بے شک بہت سے اختیار والے ہیں جن کے لیے یہ لقب یا نام استعمال کیا جاتا ہے, لیکن میں, پالوس کہتا ہے یہاں پر, تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی خداوند ہے جس نے صلیب پر جان دی, جسے قبر میں اتارا گیا اور مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا, اور اب وہ خدا کی داہنی طرف آسمان پر بیٹھا ہے, جس کے کہنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں. تو پالوس رسول جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے ایک ہی خداوند ہے, تو وہ ایمانداروں کو چاہتا ہے, غیر ایمانداروں کو چاہتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں جانیں؟ یسوع مسیح کے بارے میں, یسوع مسیح کے بارے میں. کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ دنیا ابلیسی تصویروں سے بھری ہوئی ہے, اور ان سب ابلیسی تصویروں کا جو حاکم جسے کہتے ہیں ابلیس ہے, ابلیس جسے شیطان کہتے ہیں, جس کا کام ہے لوگوں کو بہکانا اور جس کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. ابلیس بھی اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ خداوند یا خدا بنانا چاہتا ہے. کیوں؟ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے, جب ہم یسایہ اس کا 13 باب دیکھتے ہیں, 14 باب دیکھتے ہیں, تو وہاں پر ابلیس کے اس تکبر کے بارے میں بتایا گیا ہے, جہاں پر وہ کہتا تھا, میرے ساتھ دیکھیں اس حوالہ کو, کہ وہاں پر ابلیس نے کون سا گھمنڈ کیا, کون سا تکبر کیا. ابلیس پہلے ابلیس نہیں تھا, وہ پہلے کیا تھا؟ ایک نورانی فرشتہ تھا, ایسا فرشتہ جو خدا یسوع مسیح کے تخت کے سامنے کھڑا رہتا تھا, ایسا فرشتہ جو خدا کی پرستش کرنے میں بہت ہی کامل تھا, ایسا فرشتہ جو دوسرے تمام فرشتوں کو خدا کی مرضی بیان کرتا تھا, ان کو بتاتا تھا, ایسا فرشتہ جو بہت ہی خوبصورت تھا. اس کا بائبل مقدس میں اسے کیا کہا گیا تھا؟ ویسے تو اسے لوسیفر کہتے ہیں, लेकिन बाइबल में इसे कहा जाता है सुबह का सितारा। इसका नाम सुबह का सितारा था। और यशाया 14 बाब में यशाया नबी अबलीस की उस हमाकत, उसके बड़ेपन को और उसके तकब्बुर को, जिसमें वो कहता है कि मैं अपने आप को खुदावंद खुदा की मानद बनाना चाहता हूँ, तो उसने वहाँ पर यशाया नबी ने ये बातें लिखी। और कहता है यशाया नबी का सहीफा उसका 14 बाब उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर टपका गया? यहां पर जो बात हो रही है उस सुबह के सितारे से मुराद अबलीस की तरफ इशारा है, जिसने अपने आप में तकब्बर किया। और 13वीं आयत में लिखा है, तू तो कौन कहता था? अबलीस को सुबह का सितारा। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। ये इस बात की तरफ इशारा था कि मैं खुदावन खुदा के तख्त पर बैठूंगा, क्योंकि आसमान पर क्या है? खुदा का तख्त है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि तुम झूठी ना सच्ची कसम खाना, क्योंकि जमीन खुदा के पांव तले की चौकी और आसमान खुदा का तख्त है। सो अबलीस ने कहा कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, यानी कि तख्त पर बैठ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। ये किसने कहा? अबलीस ने, कि मैं तमाम फरिश्तों पर इख्तियार रखूंगा, ऊंचा करूंगा और मैं शिमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। जहां पर जब शिमाली अतराफ के पहाड़ का जिक्र किया गया है, तो अबलीस अपने दिल में ये कह रहा था कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा, क्योंकि पहाड़ इस बात को जाहिर करते हैं कि पहाड़ आसमान पर नहीं बल्कि जमीन पर हैं। सो जमीन को क्या करूंगा? जमीन पर हाकम होऊंगा। सो ये अबलीस की ख्वाहिश थी, ये अबलीस के दिल में अपना उसका एक तकब्बर था। और आगे क्या लिखा है? मैं बादलों से भी ऊंचा चढ़ जाऊंगा। किसने कहा? उस सुबह के सितारे ने, जिसको अबलीस, शैतान, पुराना अजदहा, झूठ बोलने वाला, गुमराह करने वाला, या सांप या चलाक चातर कहा जाता है, उसने कहा मैं बादलों से भी ऊंचा चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा। सो ये अबलीस के क्या थी? ख्वाहिश थी कि मैं खुदा पर, खुदा के फरिश्तों पर, खुदावंद यीशु मसीह पर और दुनिया के तमाम लोगों पर हाकम बनूंगा। ये उसकी ख्वाहिश थी। लेकिन क्या लिखा है? कि खुदा ने उसे आसमान से नीचे गिरा दिया, आसमान से उसे नीचे फेंक दिया गया, उसे जो ख्वाहिश वो करता था उसे नहीं मिली। सो अब वो जब जमीन पर फेंका गया, तो जमीन पर वो क्या चाहता है? अपने आप को मालिक बनाना, अपने आप को यीशु मसीह का हम शक्ल बनाना चाहता है, अपने आप को वो खुदा की मानद बनाना चाहता है, ताकि लोगों को गुमराह करे। सो इसीलिए पालूस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए कहा कि एक ही खुदावंद है, और वो खुदावंद कौन है? यीशु मसीह। ना के इबलीस, ना के इबलीसी तस्वीरें, ना के कोई और बुत या देवी देवता। और अगली बात जो हम सीखेंगे आज, एक ही ईमान है, एक ही ईमान है। आज इस दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह के दौर में हमें फकी और फरीसी मिलते हैं, जिनमें मुख्तलिफ अकीदा पाया जाता था। कुछ फरिश्तों के वजूद पर यकीन करते थे, और कुछ क्या करते थे? जो सदूकी थे वो फरिश्तों का यकीन नहीं करते थे, कि कोई फरिश्ते नहीं, कोई रूह नहीं, कोई और बात नहीं। फिर एक और अकीदा पाया जाता था यीशु मसीह के दौर में, जिसे यूनानी कहते हैं, जिसे रोमी कहते हैं। वो क्या करते थे? अपने शहनशाह की इबादत करते थे, यानी कि जैसे पुराने अहदनामा में हमें नजर आता है कि फाराउन फ़राउन की लोग क्या करते हैं, इबादत करते हुए नज़र आते हैं। मिस्र में जो हाकम होता था वो उसे क्या मांगते थे, खुदा मानते थे। आप सब ने 10 हुक्मों वाली फिल्म तो देखी होगी मूसा की, किस किस ने देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो आपको वो दिखाएंगे कि वहाँ पर फ़राउन अपने आप को खुदा बनाता है और खुदा क्या करता है, मूसा पैदा होता है और वो खुदा के मंसूबा के मुताबिक फ़राउन के घर में जाता है, फ़राउन की बेटी का बेटा बनकर वहाँ पर ज़िंदगी बसर करता है, तमाम तालीम हासिल करता है, सब कुछ सीखता है और आखिर को खुदा से कहता है कि बियाबान को चले जा। वहाँ पर वो 40 साल बियाबान में गुजारता है और वापस आता है और फ़राउन के सामने खड़ा होकर कहता है कि फ़राउन तू अपने आप को खुदा समझता है लेकिन मुझे उस खुदावंद खुदा ने भेजा है जिसका नाम है मैं हूँ, इसराइल का खुदा, इब्राहिम इसहाक यकूब का वाहद खुदा। तो पुराने अहदनामा में हमें फ़राउन नज़र आता है जो अपने आप को खुदा बनाता था, हाकम बनाता था, दुनिया का शहंशाह बनाता था और खुदा ने मूसा को भेजा कि जाकर बता कि मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है। सो हम यहाँ पर आज सीख रहे हैं एक ही ईमान है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमान क्या है, हमारा ईमान क्या है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इस दुनिया में बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो इस बात का इनकार करते हैं। हमारा ईमान है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। बहुत से लोग कहेंगे कि वो सलीब पर नहीं मिला मरा। हम सब का ईमान ये है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि यीशु मसीह कब्र में उतारा गया। बहुत से लोग आपको मिलेंगे वो ये नहीं यकीन करते। हम सब का ईमान है बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। सो पालूस रसूल जब उनको कहता है एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, तो वो उनको याद दिलाता है कि तुम्हारा ईमान ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है जो सलीब पर मुआ, उसने दुख उठाया और फिर मुर्दों में उसे कब्र में उतारा गया और आसमान पर उठा लिया गया। ये बाइबल मुकद्दस में से हम सब का ईमान है। लेकिन आपको इस दुनिया में हमारे पड़ोसी कहते हैं कि यीशु मसीह कभी भी जमीन पर, कभी भी आसमान पर मुर्दा नहीं गया, बल्कि मुर्दों में से जी उठकर नहीं गया बल्कि जिंदा उठाया गया है। लेकिन वो गलत सोचते हैं। इसीलिए पालूस रसूल भी कहता है एक ही ईमान है। हम सब का ईमान है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। दुनिया में आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं जी बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। इसलिए पालूस रसूल कलीसिया को मजबूत करते हुए, उनको ईमान को मजबूत करते हुए कहता है बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। हमारे ईमान में बहुत सी बातें आ जाती हैं, जैसे खुदा ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन सारे काम को मुकम्मल किया। खुदा ने आदम और हवा को बनाया। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम इसका यकीन नहीं करते। खुदा ने नूह को हुक्म दिया कि कश्ती बना और हम सबको बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने कश्ती बनाई और उसके खानदान के 8 लोग बच गए। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि यीशु मसीह ने 12 रसूलों को मुकर्रर किया और वही पूरी दुनिया में गए और जाकर मनादी की। हम सबका क्या है, ये ईमान है। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूं और फिर वापस आऊंगा ताकि कलीसिया को साथ लेकर जाऊं। ये हम सब का क्या है, ईमान है। सो जब वो कहता है एक ही ईमान है, तो वो पालूस रसूल कलीसिया को लिखते हुए यही कि खुदा ने जमीन आसमान को बनाया, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर इसलिए आया कि गुनाहों की कुर्बानी दे, वो मुर्दों में से जी उठा ताकि हम भी उस तरह ज़िंदा किए जाएं, वो वापस आएगा ताकि ज़मीन पर फिर अदालत करे। जैसे भाई सैमुअल ने गाया कि जब यीशु वापस आएगा तो तेरे पास देने को क्या जवाब होगा। सो इस दुनिया में हमें बहुत से अकीदे, बहुत सी सोचें मिलेंगी। बाइबल मुकद्दस ये भी बयान करती है, आप सब इस पर ईमान रखते हैं कि एक ही जिंदगी है और उस जिंदगी का मरना जरूर है। एक ही बार मरते ना हम, और उसके बाद फिर अगर कोई यीशु पर ईमान रखता है तो वो उसकी हजूरी में जाता है, अगर नहीं रखता तो वो दोजख में जाता है। इस दुनिया में आपको लोग ये इस तरह का भी अकीदा रखने वाले मिलेंगे, वो कहते हैं कि जी इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, जिसमें हिंदुओं का अकीदा ये है कि आप लोग क्या करते हैं, हिंदू ये मान रखते हैं कि 7 दफ़ा पैदा होना और 7 मौके मिलते हैं ताकि भगवान या परमेश्वर या देवी देवताओं की अगर मर्जी के मुताबिक चलें तो हम अगले जन्म में बादशाह या बहुत ही अमीर पैदा होते हैं, लेकिन अगर हम ना करें तो वो कहते हैं, ये हिंदुओं का अकीदा है, आप बांदर या चूहा या खोता या किसी और जानवर की सूरत में पैदा होते हैं। सो हमारा ये अकीदा नहीं, हम सब का अकीदा क्या है, खुदा ने कहा है कि ऐ आदम तू खाक है और फिर खाक में मिल जाएगा। सुलेमान बादशाह ने कहा था कि जब कोई बंदा मर जाता है तो जिस्म खाक के हवाले किया जाता है और रूह खुदा के पास चले जाती है। इस दुनिया में बहुत से आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि जी रूह कहाँ पर जाती है, पाताल में जाती है। ईमानदारों की रूह पाताल में नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के पास जाती है। अगर आज मैं मर जाऊं तो मुझे पता है कि मैं यीशु मसीह की हजूरी में जाऊंगा, नीचे जमीन में नहीं रहूंगा। सो बहुत से कीदे मिलेंगे, इसलिए इस एक लफ्ज पर जब पालूस कहता है एक ही ईमान है तो सादा लफ्जों में ये कहता है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि गुनाहों की कुर्बानी दे, सलीब पर दुख उठाए, मारा जाए और फिर मुर्दों में से जी ले। और ये सब कहाँ से मिलता है, खुदा के कलाम से। सो मेरी दुआ ये है कि हम सब इस बेदीन से मुराद यानी कि बेईमान जमाने में अपने ईमान पर कायम रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जब हम सब उसमें कायम रहेंगे तो हम बहुत सा फल लाएंगे। इसलिए अबलीस चाहता है कि हम गुमराह हों, अबलीस चाहता है कि हम यीशु मसीह की बजाय दुनिया की हर एक चीज़ पर यकीन करें। याद रखें, जब हम यीशु पर यकीन रखेंगे तो दुनिया की हर एक चीज़ जो कभी आपने ख्वाहिश की है, खुदा जानता है जो बेहतर है वो आपको इस ज़मीन पर देगा। अगर हम किसी चीज़ से यहाँ पर महरूम रह जाएँ तो आसमान पर हमें बहुत बड़ा ख़जाना मिलेगा। सो आए हम खुदावन खुदा के हुजूर झुकें और ये एक ही जो ईमान है इसके बारे में दूसरों को बताएं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह ही निजात है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा वरना वो दोजख में जाएंगे, और ये बाइबल मुकद्दस का सच और हतमी फैसला है। आए हम दुआ करें।